पृष्ठ संख्या 174, सामाजिक न्याय और महिला, डॉक्टर उषा टोप्पो, सह प्राध्यापक, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है सभी नागरिकों को समान समझना और मूल वंश, जाति, धर्म, लिंग, उपाधि आदि के आधार पर समाज में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश के मामले में विभेद या निर्योग्यता का निषेध किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 38 में राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, उन्हें प्रभावी रूप से स्थापित और संरक्षित करे तथा लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करे। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में सामाजिक न्याय ने सदैव संवेदनशील व्यक्तियों को आकर्षित किया है। मेरे विचार में मार्क्सवाद के प्रति करोड़ों लोगों का बुनियादी आकर्षण इसलिए नहीं था कि उसने वैज्ञानिक सिद्धांत को अपनाने का प्रयास किया, बल्कि उसका कारण था कि सामाजिक न्याय के प्रति उसका गहरा लगाव। समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं, स्त्री और पुरुष। पुरुष तो स्वच्छंद है, परंतु स्त्रियों के कार्य और उनकी स्थिति विशेष रूप से अधीनस्थ रही है और कालांतर में पुरुष की सेवा और जीवन के प्रत्येक चरण में उस पर निर्भर रहना ही क्रमशः उसके कार्य और स्थिति माने जाने लगे। वह पुत्री के रूप में अपने पिता के संरक्षण में, पत्नी के रूप में अपने पति के संरक्षण में और विधवा के रूप में अपने ज्येष्ठ पुत्र की देखरेख में रहती थी। संक्षेप में उसका जीवन निरंतर संरक्षण का जीवन था और सामाजिक विधान और परंपराओं में उसे एक प्रकार से मानसिक रूप से अविकसित ठहराया गया। न्याय का अर्थ है व्यक्तियों तथा समूहों के परस्पर हितों के बीच सामंजस्य। यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि उद्देशिका में न्याय को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत से ऊंचा स्थान दिया गया है। न्याय की संकल्पना वस्तुतः काफी व्यापक है, यह केवल संकीर्ण कानूनी न्याय पर सीमित नहीं है जो न्यायालयों द्वारा दिया गया है। न्यायालय आखिर विधि न्यायालय है। सामाजिक आर्थिक न्याय को राजनीतिक न्याय से उच्चतर स्थान दिया गया है। उद्देशिका की मूल भावना यह है कि सभी लोगों को, जिनमें कारगर भी शामिल हैं, सामाजिक आर्थिक न्याय मिले। काम को मानवोचित दशाओं, प्रसूति सहायता, अवकाश, पिछड़े वर्गों के आर्थिक हितों की अभिवृद्धि, न्यूनतम मजदूरी, बेगार के प्रतिषेध आदि से संबंधित समाप्त प्रावधानों का लक्ष्य सामाजिक न्याय है। वास्तव में संविधान के भाग 4 में विभिन्न अन्य अनुच्छेद का भी लक्ष्य न्याय से अनुप्राणित कर एक नई सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इस प्रकार इसमें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार का, काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का, बालकों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का, कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि का और कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण आदि का उपबंध किया गया है। नेहरू तथा अम्बेडकर का यह स्पष्ट मत है कि आर्थिक न्यायालय के बिना सामाजिक न्याय निरर्थक है। धर्म, जाति एवं संप्रदाय के भेदभावों से ग्रस्त हमारे समाज में आर्थिक न्याय तब तक काफ़ी नहीं है जब तक कि उनके साथ सामाजिक न्याय जुड़ा न हो। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम अंतर विरोधों के जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमें समानता प्राप्त होगी, पर सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में हमें समानता प्राप्त नहीं होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और एक वोट और एक मूल्य सिद्धांत को मान्यता देंगे। सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में हम सामाजिक तथा आर्थिक ढांचे के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत को नकारते रहेंगे। स्त्रियों के कार्य और उनकी स्थिति विशेष रूप से अधीनस्थ रही है। स्त्रियों का जीवन निरंतर संरक्षण का जीवन रहा और सामाजिक विधान और परंपराओं में से उसे एक प्रकार से मानसिक रूप से अविकसित ठहराया गया। पैदा होने पर लड़की को अनचाहा मेहमान समझा जाता था, लेकिन हिंदुओं को धार्मिक दृष्टिकोण से अनुसार हतभागी पुत्री भूले बिसरी घड़ी में किए गए अपने पिता के पाप पुण्य का शोधन नहीं कर सकती थी। अतः उसे कुछ कबीलों ने शिशुकाल में ही मार डाला था। यदि उसे जीवित रहने भी दिया जाता, उसे पति के साथ अटूट बंधन में बांध दिया जाता। यदि गर्भावस्था में उसकी मृत्यु हो जाती तो कभी कभी चुड़ैल नामक भयानक प्रेतात्मा का रूप धारण करके पड़ोस में अड्डा जमा लेती। मृत्यु या आत्म बलिदान ही उसे मुक्ति प्रदान करते थे। इस प्रकार जन्म से लेकर मृत्यु तक स्त्री की दशा अत्यंत दुखद रहती थी। उनकी धर्म और न्याय सुधारवादी आध्यात्मिक आंदोलन भाग्य पर असंतोष करने की बात कहकर उसे सांत्वना प्रदान करते हुए उन्होंने भी सावधानी से किसी आधिकारिक स्थिति से और उन्हें अपनी आंतरिक धर्मात्मा से परे रखा है। हिंदू विचारधारा के अनुसार स्त्री का प्रमुख कार्य पुत्र पैदा करना था, और यदि वह पुत्र को जन्म देती थी तो लोग घर में उसका सम्मान करते थे। भारतीय नारी का क्षेत्र कठोर रूप से घर और घरेलू देखभाल तक ही सीमित था। उसके सारे स्वप्न स्वयं में को पतिव्रता सिद्ध करने और पति को प्रसन्न रखने में ही केंद्रित रहते थे। दूसरी ओर पुरुष से निर्बल मस्तिष्क वाली और महत्वपूर्ण मामलों में विश्वास न करने योग्य समझने लगा। वह घरेलू मामलों में उसकी सहायता का स्वागत करता और उसका महत्व मानता था। कुछ अपवाद स्वरूप महिलाएं ऐसी रही होंगी, किंतु सामान्यतः स्त्रियों की स्थिति का यह आकलन हिंदू समाज को देखते हुए ठीक है। स्त्रियों की बौद्धिक संस्कृति में वर्गानुसार भेद था। ग्रामों में जहाँ स्त्री ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अंग थी, साधारण अर्थ में सांस्कृतिक उत्थान की गुंजाइश नहीं थी। यहाँ तक कि बुनाई भी कुछ क्रियाओं से उन्हें उचित रखा गया था, यद्यपि घरेलू कार्य में ये बंधन नहीं थे। दूसरी ओर कृषक स्त्रियों के दरिद्र वर्ग को दुर्भाग्य से घरेलू काम, कृषि कर्म और बच्चों के साथ इतना अधिक व्यस्त रहना पड़ता था कि उन्हें बौद्धिक कार्य, इलाजों तथा मनोरंजन के लिए भी समय नहीं मिल पाता था। इस प्रकार उनकी मानसिक संस्कृति बहुत पिछड़ी रहती थी, जिसे लोक कथाओं में हम आसानी से देख सकते हैं। उच्च वर्ग का जीवन साहसिक कार्यों और संकटों से परिपूर्ण था, जिसमें कलाओं और विज्ञानों की उन्नति को प्रोत्साहन मिलता था। देवल रानी, रूपमती, पद्मावत और मीराबाई हिंदू संस्कृति के अच्छे उदाहरण हैं। भारतीय समाज में भूमिका निर्धारण के संदर्भ में पुरुष के कार्य और स्त्रियों के कार्य में भेद किया गया। गृहस्थी के प्रबंध का काम निरूपवाद रूप से स्त्री के क्षेत्र में आता है। स्त्रियों को घर के सारे कामकाज खुद ही करने पड़ते हैं, जैसे पानी भरना, खाना पकाना, घर की सफाई करना, अपने और घर के पुरुषों और बच्चों के कपड़े धोना तथा बच्चों की देखभाल। पुरुष यदि इनमें भी कोई काम करते दिख गए तो उनका उपहास किया जाता है। पुरुष के ये काम तभी कर सकते हैं यदि पत्नी घर में ना हो। यह धारणा इतनी गहरे रूप से जमी हुई है कि विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत तथा पूर्णकालिक सेवारत स्त्रियों से भी अपेक्षा की जाती है कि वे इसके अतिरिक्त गृहस्थी के काम भी करें। बहुत सी स्त्रियां जब अपने घरेलू दायित्व तो नहीं पूरे कर पाती तो उन्हें अपराध बोध न भी हो तो एक अपर्याप्तता तो महसूस होती ही है। हिंदू समाज का पितृवंशी स्वरूप स्त्री में अनेक चारित्रिक गुणों की अपेक्षा करता है। उनमें से पहला है पतिव्रत या सतीत्व। विवाह से पूर्व स्त्री को किसी पुरुष के विषय में यौन संदर्भ में नहीं सोचना चाहिए। विवाह के बाद अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष पर विचार मन में ना लाएं। दूसरा चारित्रिक गुण है यदि पति के प्रति समर्पण। यही कारण है कि वे उपवास, व्रत आदि अनुष्ठान पर ध्यान देती हैं। इन उपवास व्रतों में पति की दीर्घायु की प्रार्थना भी की जाती है, ताकि पत्नी को वैधव्य के कष्ट ना सहने पड़े। बहुचर्चित सतीत्व धारणा के तहत स्त्री अपने पति की चिता में स्वयं को भस्म कर देती है। निश्चय ही इस प्रथा पर कानूनी प्रतिबंध है, और समकालीन भारत में सती होने के मामले वास्तव में बहुत कम हैं। सती प्रथा का उन्मूलन एक ऐसा सकारात्मक हस्तक्षेप था जिसने स्त्री को यंत्रणा से बचाया, किंतु अपने पति की चिता पर स्त्री के आत्मदाह का महिमा मंडल अब भी जारी है। राजस्थान में रूपकवर प्रकरण एक भावेश पूर्ण मुद्दा बन गया था, और उसे सती के समर्थकों और विरोधियों की भावनाएं उद्वेलित की थी। द्विज जातियों में विधवाओं को अब भी नीची निगाह से देखा जाता है, यद्यपि उनमें से छोटी संस्था परंपरा की बेड़ियां तोड़कर पुनर्विवाह कर लेती हैं। कन्या शिशु हत्या अब भी जारी है। प्रतिवर्ष बालकों में 3 लाख अधिक बालिकाएं शैशव काल में मर जाती हैं। अनेक मौतों का कारण उदासीनता तथा जानबूझकर की गई लापरवाही को माना जाता है, क्योंकि लड़की को भार समझा जाता है। चिकित्सीय तकनीकों में हाल ही में हुई एक प्रगति एमनियोनिटेनिस से अजन्मे शिशु का लिंग निर्धारण संभव हो गया है और इससे कन्या भ्रूण की हत्या आसानी से हो गई है। पृष्ठ संख्या 178। मीडिया के माध्यम से यह पता चलता है केवल मुंबई में ही एक वर्ष में लगभग 40,000 कन्या भ्रूण हत्या के मामले सामने आए हैं। अब तक यह युक्ति केवल शहरों में ही नहीं बल्कि छोटे छोटे गाँवों में भी व्याप्त है। अब कुछ वर्षों के अंदर समुदाय विवाहों का प्रतिशत बढ़ा है, किंतु कुछ बाल विवाह भी हो रहे हैं, जबकि इसके विरुद्ध कानून मौजूद हैं। मूल अधिनियम में विवाह की न्यूनतम आयु लड़की के लिए 18 वर्ष तथा लड़के के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है, लेकिन भारत में कुछ हिस्सों में अब भी सामूहिक विवाह होते हैं जहाँ बच्चों का विवाह कर दिया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्रियों को मताधिकार मिला और संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार में भी कुछ सुधार हुआ है, किंतु स्थिति अब भी वही है। कन्या बाल श्रम का शोषण, यौन शोषण और वेश्यावृत्ति के लिए लड़कियों को देवदासी के रूप में मंदिरों को समर्पित करना तथा लड़कियों का यौन उत्पीड़न। स्त्रियों के समर्थन में कुछ आंदोलन भी हुए, जिसमें ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक आंदोलन महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गांधी जी ने भी स्त्रियों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए गोल बंद कर उन्हें उनकी बेड़ियों से मुक्ति दिलाई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद स्त्रियां अनेक मोर्चों पर आगे बढ़ी हैं। ऐसे अनेक क्षेत्रों में भी वे अधिक दिखाई देती हैं जो परंपरागत रूप से स्त्री के नहीं तथा सामान्यता वे अधिक स्वाग्रही हैं। कानून, शिक्षा और अब आर्थिक तथा सामाजिक अवसरों के कारण महिलाओं की स्त्रीत्व में तेजी से बदलाव आया है। सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया है। सती उन्मूलन, बहुविवाह कुप्रथा को सुधारने के प्रयास, विवाह की उम्र बढ़ाना, दहेज विरोधी कानून, विवाह विच्छेद कानूनों का उदारीकरण, अभिभावक संबंधी कानूनों में परिवर्तन, भरण पोषण संबंधी कानून, उत्तराधिकार कानून आदि ऐसे कानून में हुए कुछ इन परिवर्तनों को लागू करने में कठिनाई हुई है। उनमें बचाव के रास्ते छूट गए हैं, जिससे इन प्रयासों का अभीष्ट पूरा नहीं हो पाता। हिंदू संहिता को पारंपरिक प्रयासों के लिए छूट देनी पड़ी। पारिवारिक संपत्ति में अपना विधि सम्मत अधिकार पाने में उन्हें कठिनाई होती थी, यहाँ तक कि स्त्री धन पर भी उन्हें पूरा अधिकार नहीं मिलता। वर्तमान समय में स्त्रियों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़े हैं। अब अधिक लड़कियाँ शैक्षिक संस्थानों में प्रविष्ट होती हैं, किंतु शैक्षिक संस्थानों में भर्ती होने वाली लड़कियों की संख्या लड़कों के मुकाबले कम है तथा बीच में ही पढ़ाई छोड़ना एक चिंता का विषय है। नए आर्थिक अवसर खुले हैं और स्त्रियों पर भी उनका लाभ पड़ रहा है, किंतु उनके विरुद्ध एक अदृश्य भेदभाव अब भी है। जनसंख्या में उनके आकार के अनुपात में नियमित रोजगार क्षेत्र में स्त्रियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। राजनीति के क्षेत्र में भी यही स्थिति है, वहाँ भी महिलाओं की संख्या बहुत कम है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय खासकर महिलाओं के लिए एक कागजी कानून है। यह ना तो पहले था और ना अब है। भले ही इधर कुछ दशाओं में महिला संबंधी कुछ संवैधानिक नियम लागू किए गए हैं, परंतु वे पूर्णतः सफल नहीं हो सकी है। आज भी समाज में उन्हें वही न्याय मिलता है जो पहले था। आज भी समाज पुरुष प्रधान ही है। भले ही स्त्रियों को कितना ही महान क्यों ना दिखाया जाए, उन्हें अभी भी सामाजिक न्याय नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। संदर्भिका रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृत के 4 अध्याय, लोक भारती प्रकाशन इलाहाबाद, श्यामा चरण दुबे, मानव और संस्कृति, राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली।